सुख यहाँ लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर,
ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सवसाहुं। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः।
मैंने दूसरा ही कुछ बोला। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये सुख यहाँ पृष्ठ सुख यहाँ प्रथम भाग पृष्ठ संख्या 25, नीचे से तीसरी लाइन। यहाँ बात ये थी कि जब तक कुछ विकल्प में नहीं है, उस संबंधी कुछ विकल्प नहीं चल रहा है, तो उस संबंधी जो दुख है, जो उसके संबंधी राग द्वेष है, वो भी नहीं होते। ये हो रही थी बात। जैसे किसी संबंधी की मृत्यु हो गई और पता नहीं, तब कुछ भी विकल्प नहीं है, वह तो उसी प्रकार से रहता है जैसे पहले था। एक पत्र आया और उपयोग में वे बातें आ गई। अभी उस जमाने में फोन नहीं था तो पत्र की बात लिखी ना, तो पत्र भेजते थे तो पता चलता था कोई मर गया तो दुखी हुआ। यह भी तो सब विकल्प मात्र है। व्यर्थ के विकल्प में उलझ कर दुर्लभ मनुष्य के क्षण गंवाना अविवेक है।
ये बात नहीं समझा। तो दुखी हुआ, यह भी तो सब विकल्प मात्र, दुखी होना होगी ना दुखी का तो।
अरे दुख के विकल्प कर रहे हैं ना क्या, यह ऐसा है मैं छोड़। हाँ,
अरे ये होता तो मेरा ये काम होता था, मेरा पैसा मिलता था, ऐसा।
वो तो मर के 4 दिन भी हो गए, ऐसा होता है ना। पहले के जमाने में पत्र आने में भी देरी लगती थी। मेरा हुआ था, मैं जब 6th class में थी तो दिवाली के दिनों में भी उसका देहांत हुआ और हमको 3 दिन के बाद पता चला। तो सब घर के मेवा मिठाई सब खाए ना हमने, पता ही नहीं था। जब पत्र आया तो पता चल गया।
अरे आपने ऐसा ही हुआ ना, जब धर्म चक्र में थे।
हाँ,
तब मेरे मम्मी के भाई उन्हें मेरा मामा वो गुजर गए और 1.5 महीने के बाद किसी ने
कहीं वो श्रवण बेलगोला गए, वहाँ कोई यात्रा में आए हुए, उन्होंने बोला अरे ऐसा हुआ, अरे पता ही नहीं था मम्मी को भी और हमको भी।
मैंने जब तो हम दर्शन करे सब मतलब सब चलता था।
नहीं वो मामा का वैसे सुतक की बात नहीं थी, मगर वो
की बात नहीं थी, फिर भी
दुख तो होता है ऐसा।
मम्मी ने नहीं दुख किया मेरे।
मैंने ये कहना चाहते कि जब तक पता नहीं तो उस संबंधी विकल्प भी नहीं आते,
दुख का विकल्प,
और ये विकल्प कर करके दुखी होता है, ये कहना चाहते। अतः मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, अद्वैत हूँ, एक हूँ। इस स्वरूप सत्ता मात्र मुझ में विकार आते भी है तो आओ क्या कहते हैं। यानी अपना स्वरूप यानी अपने स्वभाव की सत्ता है, उसमें हमने मैं अपना स्थापन किया है, तो परिणति में अपने विकार है ना, विराग द्वेष के परिणाम में विकल्प भी आते ही जाते हैं। तो कहते आते हैं तो आए ना, जब तो आते तो आओ। वे विकार मेरे स्वभाव से नहीं उठते, यानी आने वाले विकारों से विकल्पों से मैं भिन्न हूँ, ये भेद विज्ञान करना है। हम तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या ध्यान के नाम पर उसको उठाने की कोशिश करते हैं, यानी उसके कर्ता बन के बैठते हैं, ये कहना चाहते हैं। मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, अतः निर्विकार हूँ। स्वभाव में मैं पना स्थापित करना है तो पर्याय में विकार से अपना क्या लेना देना है, इसको गौण करके उसको अपने से, क्योंकि मैं जो है वो कायम एक रूप एक सदृश रहने वाला ऐसा जो द्रव्य स्वभाव है वह मैं हूँ ऐसा हमने नक्की कर दिया, तो उसमें ना विकार है ना अपूर्णता है ना उसमें कोई वधगट होती है, एक सदृश परिणाम कायम ऐसा का ऐसा रहता है। इसलिए कहते मैं तो स्वभाव मात्र हूँ अतः निर्विकार हूँ, इसीलिए मैं शुद्ध हूँ जब कहते हैं तो ये स्वभाव के लिए मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहा। परिणति की अपेक्षा ले लेंगे तो उसमें पर्याय में अशुद्धता है विकार है सब कुछ है, तो हमने मैंपना किसमें स्थापित किया है स्वभाव में, जहाँ विकार ही नहीं प्रतीत होते हैं, यानी वहाँ विकारों का लक्ष्य ही नहीं, हमने तो उसको गौण करके वो स्वभाव में एकता स्थापित कर दी। वहाँ भिन्न सत अंजन की कथा ही क्या है, सत अंजन ने उपाधि उपाधि है परंतु वो मेरे से भिन्न है। सो मैं निरंजन हूँ, मैं तो सत्य हूँ। देखो ये जो मैं शुद्ध हूँ या निरंजन हूँ या एक हूँ ये जब कहते हैं तो उसकी अपेक्षा बराबर समझना चाहिए, क्योंकि तो स्वभाव के लिए अपने को मैं कह दिया तो फिर उसमें जब स्वभाव में मैं कह दिया तो वो विकार मेरा स्वभाव नहीं है वो उपाधि रूप भाव है। तो मैं तो सत्य हूँ केवल निज सत्य में होने वाला तत्व मात्र हूँ अतः सत्य हूँ, स्वयं समाधान रूप हूँ शांत हूँ सो समाधिस्थ हूँ। ऐसे सहज चैतन्य स्वरूप मात्र मैं, वो सहज है, अपने को यथार्थ परमार्थ रूप में देखूं और सर्व विकल्प संकटों से मुक्त होकर, संकट हमें कोई बाह्य का नहीं अपने विकल्पों का है, तो कहते विकल्प संकटों से मुक्त होकर अपने में अपने आप सुखी होऊं। हर गाथा में बताया ना श्याम स्वस्मय स्वे सुखी स्वयं। अब 9 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अजरोहम अजन्मोहम निःशरीरो निरामय निर्ममो नैर्जगत्योहम श्याम स्वस्मय स्वे सुखी स्वयं। वैसे तो सरल है, मैं अजर हूँ
नहीं अमर है,
अमरोहम अजन्मोहम।
आपने अजर पढ़ा,
अजर पढ़ा
हाँ दो बार अमर है,
अमरोहम अजन्मोहम, मैं अमर हूँ अजन्मा हूँ, यानी मैं जन्म और मरण से रहित हूँ, यानी मेरा जन्म नहीं होता मेरा मरण नहीं होता, शरीर का संयोग वियोग होना इसको हम जन्म मरण भले कह देते, कह देना अलग बात है, परंतु जीव द्रव्य मैं हूँ तो जीव द्रव्य अनादि से अनंत काल तक रहता है, प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत रहता है, इसलिए कहते हैं मैं अमर हूँ अजन्मा हूँ निःशरीर यानी शरीर रहित वह रोग रहित हूँ, जिसका जगत में कुछ नहीं है ऐसा हूँ, नैर्जगत्य कहा ना, तथा जो जगत का कुछ नहीं है ऐसा मैं हूँ, यानी जिसका जगत में कुछ नहीं है और जो जगत का कुछ नहीं है, दोनों तरफ से बता दिया, इसलिए मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूँ, मैं अमर हूँ मरण रहित हूँ, मरते समय जो दुख होता है वह वियोग का होता है, जैसा कि अज्ञानी जीव कहता है मरते समय कि मुझे वह 2 वर्ष का छोटा बालक दिखा दो अब तो मेरे प्राण छूटने वाले हैं, यानी अपने जो कुछ रिलेटिव्स है उसको छोड़ के जाने का दुख है उसका, उसके विकल्प चल रहे हैं उसके, किंतु ज्ञानी के इससे विपरीत भाव होते हैं, वह यही सोचता है कि मेरी आत्मा तो अमर है, मेरा इस संसार में कोई नहीं, मैं एक हूँ चैतन्य स्वरूप है, यानी यहाँ पर भी मैं एक हूँ अन्य से भिन्न हूँ यानी शरीर से भी भिन्न हूँ, और भले अभी यहाँ का संयोग छूट रहा है शरीर का अन्य संयोगों का, फिर भले दूसरे संयोग मिले भी और नहीं भी मिले तो वहाँ भी मैं भिन्न ही अकेला ही हूँ, ऐसे ज्ञानी को अनुभव पूर्वक वो समझते हैं सोचते हैं। तो ज्ञानी सोचते हैं कि मेरी आत्मा तो अमर है, मेरा इस संसार में कोई नहीं, मैं एक हूँ चैतन्य स्वरूप हूँ। अज्ञानी में अज्ञान लीला की हद होती है, अज्ञान लीला कहा यानी अज्ञानी के अज्ञान में यानी विपरीतता विभ्रम तो चलते रहते हैं। मैं तो मरण रहित हूँ, जन्म रहित हूँ, अजन्मा हूँ, शरीर रहित हूँ, मैं तो अपने वास्तविक स्वरूप में हूँ। यानी शरीर के संयोग होने पर भी मेरा जो असली स्वरूप है उस रूप ही मैं हूँ, मैं कभी शरीर रूप हुआ ही नहीं है। शरीर शरीर में है, मैं अपने में हूँ। किंतु ऐसा कुछ हो रहा है प्राणियों की प्रकृति में कि उसके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता। एक तो ऐसा दुख है जिसे भुलाया जा सकता है, जैसे कांटा लग गया, कुछ चुभ गया, उससे दुखी होता है। किंतु दूसरा जो दुख है उसमें समता भाव रखना बहुत कठिन तपस्या करना है। जैसे किसी ने किसी को कुछ बात कह दी तो उसको लग जाती है, यानी किसी का इंसल्ट किया मान लेते हैं तो लग जाती है, नहीं उसे वो दुखी होता। तात्पर्य यह है अपने विपरीत कहने पर जो क्षोभ होता है वह क्षोभ न होना चाहिए। ये कब संभव है? अपने को ज्ञान रूप अनुभव किया है तभी ये संभव है, तभी संभव है। किंतु प्राणियों के प्राय ऐसा धैर्य होता नहीं। किसी ने कोई कड़वी बात कही तो भुलाए नहीं भुलाई जाती। मैं तो हमेशा कहती हूँ किसी ने इंसल्ट किया हो तो 10-20 साल के बाद भी वो जैसा का वैसा बार बार याद आता है। और आचार्य कितने बार हमको भगवान आत्मा पुकारते, वो कितनी बार वो चुपती नहीं बात अंदर, वो बहुत कांटे की जैसी चुपती रहती है ना। जब उसकी याद आती है तब फिर वो वही वैसा एक शो हो जाता है। इसको कहते कितने काल के बाद भी उसके प्रति वो क्षमा भाव रूप नहीं होता। अनंतानुबंधी की बात आती है। देखो केवल स्मरण होना अलग बात है, कोई ऐसी घटना घटी हो उसका स्मरण होना अलग बात है, और उसके बारे में सोचकर वैसा ही फिर दोबारा क्रोध या मान माया लोभ उत्पन्न होना अलग बात है। हमने कल पढ़ा था ना वो बहुत घने लंबे काल सुधौला में बात आई थी, कषाय के चार प्रकार के शक्तियों के भेद बताए थे, वो शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा, इन्हें सभी कषायों के बाद बताए, चार चार प्रकार के उन्होंने शक्ति के भेद बताए थे। बहुत लंबे काल के बाद भी वो क्रोध है वो क्षमा रूप नहीं होता, मान है वो विनय रूप नहीं होता, परंतु वही क्रोध नहीं चल रहा है, परंतु जिसके प्रति वो क्रोध आया है उसके प्रति वो क्षमा रूप नहीं हो रहा, ये बात कहना चाहिए तो उसको कहेंगे वो तो बहुत तीव्र, यानी वहाँ तीव्र तीव्रतर, यानी तीव्रतर तीव्र, मंद मंदतर, ऐसे चार चार भेद किए। यही कहते हैं ना वो भुलाई नहीं भूली जाती। आगे पढ़ते, सबसे बड़ी मूर्खता यदि है तो यही है कि दूसरों के द्वारा प्रतिकूल कहने पर अहित महसूस करना, दूसरों की बात सुनकर शल्य पैदा करना। शल्य ने जिसे कांटा चुभता रहता है वैसे वो बात अपने को चुभती है। क्यों चुभती है? हमने अपने को शरीर रूप माना है, मैं मनुष्य हूँ ऐसा माना है, मैं स्त्री हूँ माना है, या मैं बहू हूँ, मैं सास हूँ, और वो उसने बहू होते हुए मुझे ऐसा बोला तो कितना कड़वा लगेगा। तो अपने को क्या मानकर ये सब कड़वा लगता है? हमको कोई बहू नहीं है इसलिए बोलते हैं। हाँ हम उदाहरण देते हैं क्या क्या चलता है दुनिया में। देखिए तो दूसरों की बात सुनकर शैल्य पैदा करता है, क्योंकि अपने विकल्पों में वो दुखी होता रहता है। ज्ञानी की बातें ही विलक्षण हुआ करती है। जैसे सुशीला उपन्यास में कथा आती है, एक स्त्री किसी पुरुष से एकांत में स्नेह की बात करने पर बाध्य कर रही थी, पुरुष ने उसका स्वीकार नहीं किया। स्त्री बोली, यदि तुम मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हें कलंकित कर दूंगी, बदनाम कर दूंगी। तो उसने अपने ज्ञान से ही उत्तर दिया, यदि मैं अपने ज्ञान में कलंकित हूँ तब तो बुरा होगा, अन्यथा तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। यही तो ज्ञानी का ज्ञान है। अतः यही विचार करना, मैं शरीर रहित हूँ, शरीर शरीर है, मैं हूँ। अभी समाधि तंत्र आत्मभावना में यही बात हुई थी सामने वाला किसको देखकर गाली दे रहा है, तो शरीर को देखकर, हाँ, तो वो तो मुझे देख ही नहीं पाता
बोलने वाला वो है।
उस बहुत जगह ये बात आती है, अभी आत्मभावना भी अभी अभी हमने पढ़ी थी, और वो जो बोलने का कार्य है उसका तो है ही नहीं है, वो भाषा वर्गना का कार्य है, तो हम किसके प्रति द्वेष करें, क्या करें। शरीर को देह भी कहते हैं, किंतु दोनों का अलग अलग तात्पर्य है। दिहयन्ते संचियन्ते यत्र परमाणवः सह देह, और शिर्यन्ते यत्र परमाणवः सह शरीरः। देखो क्या कहते हैं, इसका उन्होंने अर्थ नहीं कहा है, मैं संस्कृत बोल देती हूँ। दिहयन्ते, देह शब्द कैसे तैयार हुआ, तो संचियन्ते यत्र परमाणु, यानी जहाँ परमाणु संचय को प्राप्त होते उसको देह कहा। और शिर्यन्ते, शिर्यन्ते यानी वो तो निकलते रहते, यत्र परमाणु स शरीर। शिर्यन्ते का एक्चुअली क्या अर्थ किया मालूम नहीं, प्रायः 20-25 वर्ष तक की आयु के तन को देह कहते हैं। अच्छा, शिर्यन्ते यानी वो तो क्षीण होता जाता है, और उसके बाद की अवस्था को शरीर कहते हैं। ये पहली बार मैंने ये सुना डिफरेंस। आत्मा तो अमूर्त है, उसमें कहां फुंसी कहां फोड़े, वह तो अमूर्त है। नहीं, मुझे रोग हुआ, मुझे ऐसा हुआ, तो आत्मा में क्या शरीर क्या फुंसे क्या फोड़े, वो तो पुद्गल है ही नहीं। आत्मा तो सदा आनंदमय है, बस बुरा काम न करो फिर कुछ नहीं तो सारी शल्य जीवन भर लगी रहती है। सब जीव सुखी होवे ऐसा विचार करने से अपना बिगड़ता भी क्या है। अपनी भावना स्वच्छ रखे, किसी का भी बुरा न सोचे, किसी के प्रति दुख की बात न सोचे। ये उपदेशात्मक भाषा है जिसको हम सदाचार की बात ले सकते हैं, या शुभ भाव रूप। जरा सी देर के लिए मानो यदि अपना सोचा हुआ दूसरे के प्रति अनिष्ट हो भी गया तो इस आत्मा में क्या वृद्धि हो जाएगी। अतः प्राणी, सबके प्रति अच्छी भावना भावो, सबसे पहला यही काम है। गाली भी यदि कोई दे देवे तो भी यही सोचो, चलो यह तो मुफ्त में ही खुश हो गया, सुखी हो गया, क्योंकि किसी को भी सुखी देखने के लिए कुछ न कुछ उसकी खुशी के लिए खर्च करना पड़ता है। अतः उसकी गाली देकर सुख प्राप्त हो जावे तो इसमें मेरी क्या हानि है। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं लोक रहित हूँ, ममता रहित हूँ। ये नैर जगत के कहा ना, लोक रहित हूँ। कर्म के उदय को निमित्त पाकर होने वाला जो मोह भाव है मैं उससे भी रहित हूँ। यानी तो कर्म के निमित्त से होने वाला राग द्वेष है या मोह है, उससे भी मैं रहित हूँ। अपने से ये जगत के समस्त पदार्थ भिन्न हैं तथा मैं इनसे भिन्न हूँ ऐसा अपने में विचारे। सम्यक दृष्टि केवल शुद्धोपयोग में ही जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें न खाने की चिंता, न कमाने की, न स्त्री पुत्रादि की। उनकी अपनी गोष्ठी रहती है तथा शुद्धोपयोग में समय व्यतीत करते हैं। हमारा भी उत्कृष्ट काम यही होना चाहिए, हम सम्यक दृष्टि बने, सबके प्रति अच्छे भाव रखे। देखो शुद्धोपयोग यानी जो हमने देखा था ना, वो पंचाध्यायी में जो बातें बताई ना, शुद्धात्म उपलब्धि उसको कहा, यानी वो तो भेद ज्ञान उसका हमेशा वर्तता है उस अपेक्षा। जो हम शुभोपयोग शुद्धोपयोग शुभोपयोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, परिणति हमेशा बनी रहती, वो शुद्ध परिणति बनी रहती। देखो सबको खुश कोई क्यों नहीं कर सकता, अतः सब मुझ पर खुश हो यह भाव व्यर्थ है। एक सेठ था, उसके पास 5 लाख रुपए थे, वह 4 बेटे, अतः उसने चारों बेटों को 1-1 लाख रुपए बांट दिया और 1 लाख रुपए अपने लिए रख दिया। फिर कुछ समय बाद देखो अपने आप सब खुशी खुशी न्यारे हो गए। बिरादरी को जिमाना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है, किसी से किसी का झगड़ा तक नहीं हुआ और अलग अलग भी हो गए। अतः अब यह शुभ काम अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले छोटे लड़के ने बिरादरी को जीवन दिया, उसने अच्छा अच्छा खाना बनवाया और सब प्रकार की मिठाई बनवाई। बिरादरी आई और जीवने लगी, जिमते जिमते कहती जा रहे, मालूम तो ऐसा पड़ता है कि पिता ने अपना सबसे अधिक भाग इसी छोटे लड़के को दिया, तभी तो इसने इस प्रकार खर्च किया। अब देखो खा भी रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं। फिर दूसरे ने दावत दी तो उसने केवल 3 मिठाइयाँ बनाई, तो जिमते जिमते बिरादरी कहती है ये लड़का तो बहुत बदमाश है, इसने 3 ही मिठाई बनवा कर अपना काम बना लिया। फिर तीसरे ने जिमाया, उसने केवल साग पूरी में ही डाल दिया। फिर चौथे ने जिमाया, उसने केवल चने की दाल और रोटी ही जिमाई। जिमने वाले बोले कि सबसे अधिक बदमाश यही है, इसने तो बनवाया ही कुछ नहीं। तात्पर्य यह है, इस जगत में प्रशंसा की दृष्टि से वैभव आदि एकत्रित करना व्यर्थ है, क्योंकि जितना धन कमाते ना तो फिर दिखाना भी चाहिए ना, कुछ प्रसंग होता है शादी ब्याह अन्य भी जो कुछ है, तो जनता सारी ही प्रशंसा करे यह संभव नहीं। महावीर स्वामी जब थे तो उनकी भी सभी प्रशंसा नहीं करते थे, कोई उन्हें माया भी कहता था, कोई कुछ। अतः जितना हो सके मनुष्य को धनादि वैभव परोपकार में लगा देना चाहिए, ये तो चरणानियोग की उपदेश की भाषा है, अन्यथा पछतावा होगा। एक सेठ था, उसके पास धन बहुत अधिक था पर था कंजूस, तो उसने काफी तो अपने लड़कों को में बांट दिया, फिर बचे हुए धन को भीतों में चिनवा दिया। मरने का समय आया तो उससे बोला न जावे, ऐसी दशा हो गई उसको। पंच लोग उसके पास आए और बोले कि क्यों भाई, क्या कुछ अब भी दान में देना है या नहीं, अब तो तुम्हारा मरण काल समीप आ गया है। सेठ जी अपना सारा का सारा ही धन दान में देना चाहते थे, क्योंकि घर में लड़कों का भी व्यवहार उनके प्रति अच्छा न रहा था। अतः उसने इशारे से प्रकट किया, हाँ मैं यह सब धन जो भीत में रखा है वह दान करना चाहता हूँ। पंच लोग इस बात को समझ न सके तो उनके लड़कों से पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या बता रहे हैं, तो लड़के बोले कि पिताजी कह रहे हैं जितना धन था वह सब तो ये मकान आदि बनवाने में खर्च हो गया, अब बचा ही क्या जो दान में देवे। अब यह सेठ सुन तो सभी कुछ रहा है किंतु बोल कुछ नहीं सकता, वह मन में कुढ़ रहा था। लड़के सब कुछ जान रहे हैं पर छल कर रहे हैं, अब सोचो कि कितना कष्ट हुआ हुआ उनको, मानव इसलिए धन नहीं बढ़ा रहे मैं आगे भूखों मरूंगा, अतः काम आ जाएगा, बल्कि इसलिए कि मेरी इस धन के कारण बढ़ाई होगी, इज्जत होगी, पोजीशन बनेगी, सब मुझे अच्छा कहेंगे, लेकिन यह सब व्यर्थ का विकल्प जाल है, अतः इन सबको छोड़कर अपने धर्म का पालन करना ही तत्व की बात है। मैं ममता रहित हूँ पर पदार्थ के द्रव्यगुण पर्याय रूप नहीं, ऐसा जानकर अपने स्वरूप में ध्यान लगाओ, ये कर्मजाल भी नष्ट हो जावेंगे। अब सोचो यदि एक बच्चे के हाथ में खिलौना देखकर दूसरा भी रोने लगता है, अब उसको चुप करना है तो कैसे किया जावे, यदि उसे पीटा जाए तो और भी रोवेगा, और यदि उस बच्चे का खिलौना छीनकर उसे दिया जाए तो वह भी रोने लगेगा। अतः सीधा उपाय यही कि उसे और दूसरा खिलौना दे दिया जाए। उसी प्रकार ये पदार्थ रूपी खिलौना तो पास आ नहीं सकता, तब रोना बंद करने का एक यही उपाय है, अपना जो स्वभाव रूपी खिलौना है उसका ध्यान करो, उसमें रमण करो, ऐसा करता हुआ मैं अपने लिए अपने आप सुखी हो सकता हूँ, अपने में अपने लिए। मैं स्वयं तो सर्व कल्याणमय हूँ, सत हूँ, अतः अमर हूँ, किंतु प्राकृतिक माया रूप प्रभावों को अपना कर अपने को मरने वाला समझ लिया, इस कारण मैं मरण के दुख से त्रस्त होता हूँ। मैं अनादि सिद्ध सत हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे जन्म की आवश्यकता भी नहीं और न मेरा जन्म होता है, किंतु प्रकृति जन्य, प्रकृति ने कर्म, कर्मोदय भाव, स्कंधों का संयोग वो उस बीच अपने आप को समझकर मैं जन्म का भ्रम कर लेता हूँ और इससे दुखी रहता हूँ। मेरा तो मेरा चैतन्य स्वरूप मात्र है, मेरे शरीर कहाँ है, जब शरीर ही मेरे नहीं तो राग मेरे कहाँ से होंगे, तथा जब शरीर भी मेरा नहीं है तो अन्य चीज़ों की कथा ही क्या, इस कारण न मेरा ये जगत है और न जगत का मैं हूँ। ऐसे सबसे निराले अद्वैत ज्ञायक स्वरूप मात्र अपने आप में मैं रहूं और आनंदमय बनूं। अद्वैत यानी मैं एक हूं, अकेला हूं, पर से भिन्न हूं, अद्वैत
पना यानी दो पना
यानी अभेद हूं, अभेद जिसको हम कहें सामान्य अभेद, निर्विकल्प है, भेद रहित ऐसा मैं हूँ, अद्वैत हूँ, मैंने दो पना नहीं है उसमें ऐसा। क्योंकि जब अनुभव में करना है तो जिसको कहें अभेद अखंड का अनुभव करो, यानी सबका भेद का भी लक्ष्य कौन करता, तब उसको कहेंगे अपना दृष्टि का विषय, जिसको हम सामान्य कहते हैं, अभेद कहते हैं, निर्विकल्प कहते हैं।
देखो अपना जैनिज्म जो है वो अनेकांतात्मक है, अन्य जो धर्मीय लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि एक ही भगवान है, अन्य कोई है नहीं, जो कुछ है वो उसके पार्ट एंड पार्सल है,
तो सब मिलकर
अद्वैत ही मानते हैं। हाँ। और हमारा जैन दर्शन ऐसा है कि वो द्वैत को भी मानता है, जैसे आपने कहा द्रव्य गुण पर्याय, तो उसमें द्वैत पना आया, लेकिन जब अनुभव होगा तो अखंड एक अभेद का ही अनुभव होगा, उसमें यहाँ ज्ञान गुण है, यहाँ दर्शन गुण है, ऐसी बातें भेद रूप से नहीं,
वो समझने के लिए है भेद,
वो अद्वैत पता है,
अन्यमति सर्वथा अद्वैत, यानी वो ईश्वर का ही सारा अंश है, सब मिलकर अद्वैत है, वो बात नहीं है।
यहाँ तो अपेक्षा सहित बातें बताई जाती है, या तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, उसमें कोई निरालापन नहीं, एक ही है, और वही द्रव्य गुण पर्याय तक के अलग अलग भेद करेंगे तो उसमें द्वैत पना आ जाता है।
दस नंबर 29 पेज।
नोपद्रवो
न मे द्वंद्वो निर्विकल्पो परिग्रह दृश्य कैवल्य दृश्याहम स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। मेरे उपद्रव नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, द्वंद्व नहीं है, मैं विकल्प रहित हूँ। विकल्प का अर्थ भेद भी होता है, विकल्प का अर्थ जो राग द्वेष के परिणाम, विकल्प बहुत अर्थ होते हैं। परिग्रह रहित हूँ, अपरिग्रह है ना ऊपर, केवल अकेले की दृष्टि से मैं प्रतिभास के योग्य हूँ, इसलिए केवल अकेले की दृष्टि द्वारा, अकेले की दृष्टि द्वारा नहीं अपने में, बस स्व की दृष्टि के द्वारा मैं अपने में, अपने लिए स्वयं सुखी हूँ। आत्मा चैतन्य स्वभाव मैं है, मैं चेतना शक्ति मात्र हूँ, इसमें दूसरी चीज का प्रवेश नहीं, अतः इसमें कोई उपद्रव नहीं हो सकता। उपद्रव ने दूसरा कोई अपने आके तकलीफ देवे, ऐसा उपद्रव कब हो सकता है कि दूसरे का अपने में एंट्री हो जावे, तब मैं ही उपद्रव मानूं और दुख मानूं तो मेरे ही ओर से उपद्रव होगा, पर की ओर से नहीं। हम सोचते हैं कि पर के कारण मुझे उपद्रव तकलीफ हो रही है, तो यह मैंने अपने में ही सोच सोच कर माना है, ये नहीं, मैं ही अपने लिए उपद्रव बन रहा हूँ, पर की ओर से ये उपद्रव नहीं हो रहा है। पर की ओर से, आरे से हुआ है ना, ओर से करना हो, पर की ओर से उपद्रव किसी भी अन्य पदार्थ में नहीं होता। हम देखते ना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में कुछ अभाव ही है, अत्यंत अभाव है, उसको स्पर्श भी नहीं करता ऐसा कहते हैं, तो उसके उपद्रव कैसे हो सकता है। पर पदार्थ में दूसरे के द्वारा उपद्रव नहीं होता, बल्कि नैमित्तिक परिणमन है। क्या कहा, जब किसी पदार्थ को निमित्त कहते हैं, तो हमने देखा किसी एक ए नाम का कोई द्रव्य है, उसमें उसका अपना परिणमन हुआ, क्यों हुआ, हाँ, उसके अपने द्रव्य की निजी शक्ति से हुए, जिसको हम उपादान कहते हैं। उस समय कोई बी नाम का द्रव्य, वो अपने में परिणमन कर रहा है अपने उपादान से, और हमें ऐसे लगता है इसको आरोप आता है कि बी ने ए का वो कार्य किया, उसको हम निमित्त कहते हैं, तो ए का कार्य जो हुआ उसको उसका नैमित्तिक कहेंगे, वो निमित्त हुआ, तो इसमें जो कार्य अपने उपादान से हुआ है, निमित्त की ओर से, उसी कार्य को नैमित्तिक कहेंगे। यहाँ क्या कहते, पर पदार्थ में दूसरे के द्वारा उपद्रव नहीं होता, बल्कि नैमित्तिक परिणमन होता है। यानी वो जो द्रव्य अपने में अपने से ही परिणमन करता है, दूसरा उसमें परिणमन कराता ही नहीं है।
यानी यहाँ जो उपद्रव हो रहा है वो स्वयं के कारण,
स्वयं के कारण वो उसने अपने, हाँ ऐसा वस्तु का स्वभाव है जिसे विभाव स्वभाव कहा जाता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, हम इतने कर्म के कारण हम दुखी है ना, तो कहते नहीं, तो क्या हो रहा है कि आत्मा में कर्म के कारण उपद्रव नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नैमित्तिक परिणमन हो रहा है। यानी क्या कि वो स्वयं ही विभाव कर रहा है, कर्म को निमित्त बनाकर उसके अनुरूप स्वयं परिणमित हो रहा है, वो अनुकूल कहा निमित्त को, और ये उसके अनुरूप परिणमन स्वयं कर रहा है, उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, कर्मों ने ऐसा नहीं बताया कि तो ऐसा करना पड़ेगा। तो कहते हैं वो अपने में ही विकार रूप परिणमन करता है, विभाव स्वभाव कहा है। बाह्य से उपद्रव नहीं निमित्त पाकर होता है, यानी उपद्रव से कोई, यानी कोई बाहर से हेरा फेरी करता है, वो बाह्म हुआ है, बाह्य चाहिए हो के अंदर यो लगाना था। एक दृष्टि से तो सभी निमित्त उदासीन होते हैं, किंतु एक दृष्टि से कोई उदासीन होता है, कोई प्रेरक होता है, एक दृष्टि से दूसरे का ही अपराध माना जाता है, एक दृष्टि से न उपद्रव है, न निमित्त है, न उपादान है, किसी परपदार्थ के कारण मुझ में उपद्रव नहीं, किंतु मैं ही कल्पना से उपद्रव मानता हूँ। हमने देखा ना कि ये स्वयं ही इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष करता है, मुझ में उपद्रव नहीं है, ये सब स्वभाव दृष्टि से समझे गए, उपयोग की बात बनी रहे तो उपद्रव भी न जचे। मेरे ख्याल से वो बीच वाला फुल स्टॉप नहीं चाहिए ना, ये सब स्वभाव दृष्टि से समझे गए, उपयोग की बात बनी रहे तो उपद्रव भी न जचे। यदि कोई व्यक्ति पैर घसीट कर चल रहा है अथवा टेढ़ी चाल से चल रहा है, यद्यपि अपने से उसका परिचय भी नहीं, किंतु कल्पना के कारण ऐसा अपने में मानता है, लक्ष्मण और परशुराम का विरोध था, यह इस कारण कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का नाश किया और क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का नाश किया, अतः इनका भी आपस में विरोध था। जब वे दोनों आमने सामने आए तो लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, और भी दो चार उल्टी सीधी बात सुनाई। तब परशुराम जी ने कहा, कर विचार देखो मन माही, मूंदहु आंख कतहु कोउ कुछ नाही। अर्थात तुम यदि आंखें बंद कर लो तो तुम्हें स्वयं ही कुछ दिखाई नहीं देगा। उसने क्या कहा था, तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। इसने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार लोक दृष्टि की आंख बंद कर लेने पर कोई उपद्रव ही नहीं है, अपने स्वभाव से चुत होने को तथा परकी दृष्टि होने को उपद्रव समझो। यानी हम अपने स्वभाव से चुत हो रहे हैं और परकी दृष्टि यानी पर में अपनापन मान रहे, शरीर में हूँ, राग में हूँ, यही अपने लिए उपद्रव है। अतः मुझ में कोई दंद फंद नहीं। यह दंद शब्द द्वंद्व से बना है जिसका तात्पर्य है दूसरा, द्वंद्व यानी दोपना। अतः जब मुझ में दूसरा कुछ नहीं तो दंद भी नहीं और फंद भी नहीं। यह आता है तौरी सकर जगत दंद फंद नित आत्म ध्याओ, किसमें है, छड़ाला में है। देखो मुझ में तो कुछ है ही नहीं, दूसरा नहीं तो दंद भी नहीं और फंद भी नहीं, क्योंकि दंद के होने पर ही फंद होता है, तो जब दंद ही नहीं तो फंद कैसे होगा। मैं तो चैतन्य स्वभाव वाला हूँ, निर्विकार हूँ, मेरा काम ही स्वच्छ रहना है, अपने को स्वच्छ सुरक्षित चाहिए, सुरक्षित रत हुआ है र निकालना, अपने को स्वच्छ सुरक्षित रखकर रागादि को पौद्गलिक समझे, इसका नाम विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय हूँ। क्या कहना चाहते हैं, ये नए की अपेक्षा से बताने नहीं इसको, स्वभाव में मैं पना स्थापित कर दिया तो मैं तो शुद्ध हूँ, स्वच्छ हूँ, और ये राग है मेरा है ही नहीं है, वो पर है, परद्रव्य कह दिया, तो परद्रव्य इसके लिए उसको पुद्गल भी कह दिया। मैं परिग्रह से रहित हूँ, मेरा जो तत्व है उसमें अन्य कुछ नहीं, तब परिग्रह क्या लगा? यही विचार अपरिग्रह कहलाता है। बाह्य परिग्रह का त्याग तो निष्परिग्रह आत्म तत्व की भावना का फल है। और लोग क्या कहते, बाह्य में कुछ त्याग करके मान लेते हैं मैंने परिग्रह का त्याग से, पहले में पहले अपरिग्रह क्या है तो ऐसा विचार ही अपरिग्रह क्या है, क्या मैं परिग्रह से रहित तो हूँ, यानी सबसे मेरा अत्यंत अभाव ही है, तो मुझ में तो परिग्रह है ही नहीं है, ये सच्चा परिग्रह है। परिग्रह ही नहीं है तो मैं निष्परिग्रह ही हूँ, ये जो भावना आत्म तत्व की भावना प्रबल हो जाते हैं तो संयोग में भी वो परिग्रह छूट जाते, ये कहना चाहते, नहीं तो मैं तो निष्परिग्रह और बरना बैठे घर में ही वो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। जिसके कारण वो रागादि उत्पन्न होते हैं, ममत्व भाव उत्पन्न होते हैं, वो ममत्व भाव भी नहीं रहा तो पदार्थ ही स्वयं में छूट जाते, इसके लिए वो निष्परिग्रह आत्म तत्व की भावना का फल है, वहां बाह्य परिग्रह का त्याग हो जाता है। जब अपने आप आकिंचन्य की भावना बढ़ गई तब इसके होने पर परिग्रह संभाले कौन? अतः छोड़ना ही पड़ता है। उदारता भी उसी के बढ़ती है जो आकिंचन्य की निष्परिग्रह की भावना करे। उच्च परिणामों का होना ही सबसे बड़ी बात है। आकिंचन्य का अर्थ होता है निष्परिग्रह, आकिंचन्य तीस पेज पर आते हम। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे पहला यही काम है। यह तो कठिन है कि अपने शरीर में पीड़ा हो और अनुभूति न हो, यह भी कठिन है कि जिस वस्तु की इच्छा हुई वह प्राप्त न होने पर विषाद न हो, किंतु इसमें क्या कठिनाई है? यदि किसी ने प्रतिकूल वचन बोल दिया तो महसूस न करे, उसके प्रति विषाद ईर्ष्या न रखे, उसके प्रति कषाय रखना, इसी का नाम तीव्र कषाय है। सबसे बड़ी जीवन की शिक्षा यही है, कोई भी उपद्रव क्यों न आवे बस यही विचार करे कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, अन्य कुछ नहीं। इन्हें बारंबार उसकी भावना के बल से ही, यहाँ तो अनुभव की मुख्यता रखना है, केवल बाह्य में कैसा दूसरे के साथ बर्ताव करना वो बात नहीं है, परंतु उसके द्वारा यहाँ समझाने का प्रयास किया है। एक सुनार और एक सेठ पड़ोसी थे। सेठ धनवान था, सुनार गरीब, किंतु इतना होने पर भी सेठ उसे तंग ही करता रहता था, किन्हीं कारणों को ढूंढ ढूंढ कर उसे तंग करता था, हानि पहुंचाता था जिससे उसकी हानि हो सके, किंतु यह सब होते हुए भी सुनार सेठ के प्रति अच्छे भाव रखता था, उसका भला ही विचारता रहता था। सेठ ने कारण न रहने पर भी उसे हानि पहुंचाने के प्रयास किए, किंतु सुनार ने हानि पहुंचाने के साधन रहते हुए भी उसे हानि न पहुंचाई। एक बार सेठ के यहाँ डाकू आ गए, उसके लठ से पिटाई करना चाहते थे कि सुनार ने देखा और स्वयं बीच में आ गया, अपने आप पिट गया, घायल हो गया, किंतु सेठ को बचा लिया। उस दिन से सेठ के भी विचार बदल गए और सुनार से सेठ ने अपनी गलती की माफी मांगी। अतः प्राणी, सबके प्रति क्षमा भाव धारण करो, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल। देखो, जैन धर्म पाया, जैन कुल में पैदा हुए, समागम भी ऋषियों का मिलता रहता है, शास्त्र भी सुनने को मिलता रहता है, ये सब होते हुए भी यदि हम इतनी बात न कर सके कि क्षमा का भाव धारण करें, तो समझो कि प्रतिकूल बोलने वाले पर क्षमा भाव न करके उस बात को और कठिन बना दिया। यदि क्षमा भाव रखते तो वह उपद्रव वहीं समाप्त तो हो गया होता, किंतु उसने विषाद करके आगे के लिए उस बात को कठिन कर दिया। क्षमा करने से मेरा घटता भी क्या है? जितना भी क्षमा भाव धारण करोगे उतनी ही इज्जत प्राप्त होगी। यदि इस प्रकार अपने को बना पाए तो समझो कि हम भगवान के कुल में सम्मिलित हो गए, उनके वंश के हो गए। यह कुटुंब जिसे प्राणी अपना मान रहा है यह तो विनाशिक है, किंतु भगवान का कुल सत्य है। अतः उस भगवान के कुल के लिए यदि अपना विनाशिक यह लौकिक कुल भी छोड़ना पड़े तो सहर्ष त्याग कर देना चाहिए, किंतु भगवान का कुल नहीं छोड़ा जा सकता। सब कुछ सहन हो सकता है, किंतु धर्म पर आक्षेप सहन नहीं हो सकता। जैसे सब काम फिर हो जाएंगे ऐसा कहकर डाले जा सकते हैं डाले के ताले
ताले
क्या ताले, ताले होना चाहिए ना। किंतु देव दर्शन के समय दर्शन न करें यह अपने को सहन नहीं होगा। जो जो अपना हित किसमें है इसकी वास्तविकता को पहचान गया वह न तो धर्म छोड़ सकता है न उस पर आक्षेप ही सहन कर सकता है। मैं परिग्रह रहित हूँ, समस्त इंद्रियों को वश में करके स्थिर होकर अपने आप में जो दिखता है वही आत्म तत्व है। इस प्रकार आत्म तत्व की जो भावना भाता है उससे परिग्रह धारण नहीं हो सकता, अतः मैं अपरिग्रही हूँ। यह जीव निज परमात्म तत्व की दृष्टि को ही हित मानता है, परिग्रह को नहीं। यह आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृष्टियों से भी नहीं दिख सकता, एक कैवल्य दृष्टि को छोड़कर। कैवल्य दृष्टि नहीं तो अभेद अखंड, क्योंकि यहाँ बताया ना समय दर्शन ज्ञान चारित्र की दृष्टियाँ नहीं, उसमें भी भेद की बात आ रही, उसके कारण वो अभेद अखंड की बात कर रहे। अतः मैं अपने को कैवल्य दृष्टि से देखता हूँ, अपने लिए अपने आप सुखी हूँ। घर गृहस्थी चलाते हम सब कुछ सहन करते हैं, लड़ाई झगड़ा मुकदमा आदि आदि, किंतु जब ही स्वभाव दर्शन धारण किया कि सब कुछ क्षण भर में छूट गया। पद्म पुराण में बताया है, ये पद्म पुराण क्या है मालूम है कश्मीली भाई? रामायण है। क्या 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 महाभारत भरतेश्वर भी वो अलग, वो तो आदिनाथ का है, ये रामायण है, पद्म पुराण रामायण है। पद्म पुराण में बताया है कि उदय शंकर अपनी बहन को लेने आया तो उसका जीजा वज्रभानु वो उसकी बहन से बहुत ही मोहित करता था, अतः मोहवश वह भी उसके साथ हो लिया। रास्ते में जंगल पड़ा, वहाँ एक मुनि तपस्या कर रहे थे, यह वज्रभानु उनकी ओर देखता ही रह गया और उसे वहीं वैराग्य हो गया। साले ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम भी मुनि होना चाहते हो जो ऐसे देख रहे हो? वज्रभानु इसी पेशोपेश में पड़ा था कि मैं इनसे क्या कहकर इजाजत मांगू, किंतु स्वयं ही कारण मिल जाने पर बोला, यदि मैं दीक्षा ले लूँ तो क्या तुम भी ले लोगे? उदय शंकर ने सोचा, यह तो महामोही है, यह क्या दीक्षा लेगा, अतः प्रकट में कहा, ठीक है मैं भी ले लूँगा। वज्रभानु ने तुरंत ही दीक्षा धारण कर ली। उदय शंकर आश्चर्य से उसे देखता ही रह गया और फिर क्षणभर में ही उसे भी वैराग्य हो गया। यह बात नहीं कि उसने वज्रभानु के शब्दों को याद कर ऐसा किया, किंतु इस मुनि की मुखमुद्रा ही ऐसी शांत और आनंदयुक्त भाव वाली थी कि वैराग्य हो जावे। अतः वज्रभानु का आश्चर्यकारक चरित्र देखा कि वैराग्य हो गया, फिर अंतर्मूर्त में ही उस अवरुद्ध को भी वैराग्य हो गया। बताओ क्षण भर में क्या से क्या हो गया, जा रहे थे कहाँ पहुँच कहाँ गए, न इधर खबर है न उधर। और हम ऐसे मोह में पड़े हुए हैं, यदि कहीं सफर में रेल आदि से जाते हैं तो हर अगले स्टेशन से पत्र डालते रहते हैं, अब मैं अमुक स्थान पर पहुँच गया। अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं ना, हाथ में मोबाइल हो तो कंटिन्यूस चलता ही रहता है ना, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ तक आ गए हैं ना। वहाँ से भी पत्र लिखा, मैं आराम से हूँ आदि, और फिर पहुँच कर पत्र डालते रहते, या यहाँ न चिट्ठी न पत्री थी। बीच जंगल में मुनि दर्शन से मुखमुद्रा ही देखकर तीनों प्राणी वैराग्य को प्राप्त कर अपनी आत्मा के अपने कल्याण में लग गए। अभी क्या करना पड़ेगा, पहले सबको बताना पड़ेगा व्हाट्सएप पर, अरे मैं रिक्शा ले रहा हूँ। वो किसके पास छोड़ देगी अपन मोबाइल, वो रख के लेना है रिक्शा के, छोड़ के लेना। हाँ
आशा, आशा क्या बता रही है?
अभी सब लैपटॉप वाले है कह रहे हैं, हम ये सच्ची की बात कर रहे हैं, जो इसे सच्ची रिक्शा लेगा उसकी बात पूछ रहे हैं आपको। यह मुख मुद्रा अंतरंग के स्वानंद से संतोष से ही प्राप्त हो सकती है। हम चाहे विशेष आनंद होने पर खूब ठट्ठा कर हंसते, किंतु वह मुख मुद्रा बननी कठिन है। वह तो तभी होती है जबकि स्वानुभूति हो जाती है। अपने को पहचान लिया है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, बाह्य पदार्थों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। अपने आप के आत्म तत्व के अविचल प्रत्यय से जो सहज आनंद जगता है, उसकी सानी का आनंद और कोई है ही नहीं, यानी उसके समान। हाँ, तुलना की बात, सानी यानी तुलना। अच्छा, आपके वहाँ का शब्द है क्या, यानी उसकी तुलना वाला कोई
है मुकाबले में,
उसका मुकाबले। यह मैं तो केवल शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, मेरे कोई उपद्रव नहीं, मेरे कोई द्वंद्व नहीं, मैं सहज निर्विकल्प हूँ, समस्त परिग्रह भार से स्वतः मुक्त हूँ। अतः मैं ब्रह्मजाल को छोड़कर अपने ही स्वरूप में स्थिर होकर अपने में अपने आप सुखी हूँ। देखो, पहले ये अपना चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होकर अपना अनुभव करने से और अपने को परिग्रह रहित अनुभव करने से ही बात शुरू होगी। मात्र बाह्य का परिग्रह त्याग करने से कुछ नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है और बाह्य त्याग करते रहा तो उससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है उसके। इसलिए बारंबार कह रहे हैं मैं परिग्रह रहित हूँ। 11 नंबर, निर्वंशश्चेतनावंश निर्वृश्चेतनागृह चैतन्यान्यन्य मे किंचित स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। यानी निर्वंश है और चेतना मेरा वंश है, निर्गृह और चेतना गृह है, चेतनात अन्यत न मे किंचित, चेतनात अन्यत न मे किंचित, चेतना से अन्य मेरा कुछ भी नहीं है। मैं वेश रहित क्या, निर्वंश रहित चाहिए,
रहित किया है अर्थात वेश रहित
नहीं, नहीं वंश रहित चाहिए ना, निर्वंश चेतना वंश मैं वंश रहित हूँ तथा चेतना ही जिसका वंश है ऐसा हूँ। मैं घर रहित हूँ, चेतना ही जिसका घर है ऐसा मैं हूँ। वह वंश चाहिए क्योंकि निर्वंश और वंश ऐसा ले ले, विरोधाभास कहते हैं, मेरा कोई वंश नहीं है और कहते हैं चेतना ही मेरा वंश है। मैं घर से घर बिना का हूँ, चेतना ही मेरा घर, मेरा चेतना से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूँ। मैं निर्वंश हूँ, निर्वंश मैं अमुक वंश वाला हूँ ऐसा नहीं, उसमें अग्रवाल खंडेलवाल आदि जाति भेद से भी रहित हूँ तथा क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य आदि जातियों से भी रहित हूँ। यदि मेरा वंश ही है तो मेरा वंश चेतना है जिसकी परंपरा अनादि से अनंत तक चलती रहती है। अन्य कोई वंश मेरा नहीं है, वंश वही होता है जो परंपरा बनावे। मेरी परंपरा जाति कुलादि से नहीं बल्कि चेतना में बनती है। इन्हें अनादि से अनंत काल तक यही का यही मैं चेतना वंश वाला हूँ। अतः मेरा वंश है तो वह चेतना, और मैं निर्ग्रह हूँ, घर रहित हूँ, महल मकान आदि से रहित हूँ। मेरा असली घर चेतना है, जिसमें हम बराबर बने रहते हैं, जो कभी टल नहीं सकता, कभी हट नहीं सकता। चेतना को छोड़कर मेरा अन्य कोई नहीं। लोक में अन्य घर भी तो है, फिर हम उन्हें क्यों नहीं अपना मानते? वह इसलिए कि लोक व्यवस्था में हमें यह अधिकार है, यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। किंतु पापादिक में उदय से या कर्ज आदि के कारण कुड़की हो जाने से यह मकान छूट सकता है, किंतु मेरे स्वरूप से चेतना को कोई नहीं हटा सकता। ये क्या कहने, तो बाहे जो घर है, भले हमारे घर हमारे नाम से हमारे यहाँ कोई हटा नहीं सकता, परंतु हो सकता है किसी को कर्जा हो गया, किसी को और कुछ आपत्ति हो गई, और हमने देखा भूकंप हो गया तो घर भी छूट जाता। परंतु चेतना ऐसा घर है कि यहाँ मेरे से चेतना को कोई हटा नहीं सकता। प्रत्येक पदार्थ अपना अपना स्वरूप रखते हैं, चतुष्टय उनका भी है। द्रव्य समुदाय का नाम है, क्षेत्र प्रदेश का नाम है, और काल पर्याय का नाम है, भाव शक्ति का नाम है। इनको छोड़कर उसका दुनिया में है क्या? इसके अतिरिक्त अतिरक्ति हुआ है। इसके अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं। इसी प्रकार मेरे प्रदेश गुण पर्याय को छोड़कर और दुनिया में है क्या? यही चेतना मेरा घर वंश है, जहां मैं बेअटक बना रह सकता हूं, वहां से मुझे कोई नहीं हटा सकता। अपना ही स्वभाव मेरा सब कुछ है, इससे अन्य कुछ नहीं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, उसका उसी रूप परिणमन होगा। उसे देख दुखी न होवे, क्योंकि वहां पर मेरा क्या? जैसे किसी आलसी व्यक्ति को देखकर बुरा लगता है, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। वह जैसा है होने दो, किंतु रागादिक परिणामों के कारण ऐसा सब दुख करता है। ज्ञान से जानो कि इसका परिणमन ही ऐसा है, किंतु उसे देखकर विकल्प करना अपराध है, अविवेक है। अतः इसे मिटाने से ही शांति मिल सकती है। यदि विपरीत मानना है तो मानते रहो, उससे लाभ कुछ है ही नहीं। यानी दूसरे की परिणति, दूसरे की बातें देखकर वो विकल्प कर के स्वयं बेकार का दुखी हो रहा है, कषाय करता रहता है। जैसे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल करते हैं, उसमें छोटे कंकरों को मिठाई का रूप देकर सब किया करते हैं। जो बराती बनकर आते हैं, वे भी कुछ झुटमुठ में उस मानी हुई मिठाइयों को खाने का उपक्रम करते हैं। खाते नहीं, किंतु यह सब है क्या? केवल कल्पना की ही तो सब वस्तु है। क्या ऐसा करने से वास्तविकता आ गई? उसी प्रकार हम भी कल्पना में लगे हुए हैं, यह मेरा है आदि, किंतु इन सब में कोई वास्तविकता नहीं है। धन्य है वे ज्ञानी जो सोचते हैं, मेरा हिति तो मेरा ही स्वरूप है,
हित,
अन्य नहीं। हिति यानी हित करने वाला है क्या?
अच्छा,
क्या
हित? बरोबर है, मेरा हिति यानी हित करने वाला।
मेरे इस चैतन्य स्वरूप से अन्य कुछ नहीं। बाह्य पदार्थों से जितना त्याग बढ़ता जाता है, उतनी ही महत्ता है। त्याग का ही तो महत्व है। यदि अंतरंग से त्याग के भाव आ जावे तो अनंत चतुष्टय के दर्शन हो जावे, और यदि ऐसा ज्ञान आ गया तो समझो कि उसका बेड़ा ही पार है। यानी सबसे पहले मैं पहले अपने अंतरंग में अपने को परिग्रह रहित स्वचतुष्टय रूप से देखना है। अतः चैतन्य स्वरूप ही मेरा स्वरूप, मेरा सर्वस्व है। एक जीव द्रव्य को दूसरा कोई भी जीव द्रव्य उपाधि नहीं बना सकता। सादृश्य में स्वादृश्य की उपाधि नहीं बनती। ये जीव मेरे सदृश है, अतः मेरी उपाधि नहीं बन सकती। विपरीत जो शरीरादि पौद्गलिक वस्तु है, वह उपाधि बन जाएगी। एक स्वच्छ कांच के सामने एक कांच रख दो तो वे आपस में मलिनता जाहिर नहीं कर सकते। इसलिए समान गुण परमाणु का समान गुण परमाणु के साथ बंध नहीं होता, विषम मात्रा में हो जाता है। दो के डिफरेंस से होता है। अतः मेरी उपाधि अजीव व पुद्गल से ही बन सकती है, वह स्वभाव मेरा नहीं, मेरा स्वभाव तो चेतना स्वरूप है। आत्मा को यदि समझना है तो इसका साक्षात उपाय प्रयोग है। प्रयोग ने उसका अभ्यास बारंबार, जैसे तैरना सीखना है तो उसका साक्षात उपाय प्रयोग ही है। रोटी बनाना, मुँह से सब विधि बता दो, थाली में इतना आटा लेना, फिर आटा पतला भी न हो गाढ़ा भी न हो, पहला परत कम सेके दूसरा परत अधिक सेके, रोटी ऐसे बनाना आदि सब विधि बता दो, फिर उसे बिठा दो रोटी बनाने के लिए, क्या वो बना देगी? नहीं, साक्षात उपाय तो प्रयोग ही है।
प्रैक्टिस,
प्रैक्टिकल। कितना ही संगीत पुस्तक से सिखा दो किंतु क्या वह बिना प्रयोग के सीख सकता है, हारमोनियम आदि? नहीं, साक्षात उपाय सीखने का प्रयोग ही है। अतः यदि आत्मा के स्वरूप को समझना है तो साक्षात उपाय प्रयोग ही है। ज्ञान मदद करे तभी नहीं बल्कि चारित्र भी हो, ताकि हम एक चित्त होकर अपनी आत्मा के कल्याण में लग सके। चारित्र ने वो आत्मा में स्थिरता, वही चारित्र है, पहले में पहले उसकी बात है। बाह्य पदार्थों के भूलने से ही आत्मा के दर्शन होंगे। जैसे कोई सभा हुई, उसमें कोई प्रस्ताव रखा गया, उस पर अमल करो, किंतु ऐसा कहने से ही क्या अमल हो गया? नहीं, जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। प्रयोग से ही विजय है, ज्ञान है, यह तो ठीक, किंतु बिना प्रयोग के काम बनेगा नहीं। हमारा समागम ऐसा होना चाहिए कि सुबुद्धि बनाकर आराम से रह सके, नहीं तो यह सब कमाने से ही क्या फायदा। सुबुद्धि बनाकर ऐसा समय निकालो ताकि दो क्षण अपनी आत्मा के कल्याण में भी लग सके। किसी भी दुखी को देखकर हम दया की बातें तो खूब करते हैं, किंतु उसे वहां उठाने का उपक्रम नहीं कर सकते। देख रहे कि बेचारा असमर्थ है, गंदे नाले में गिर गया, न निकल पाने के कारण तड़फड़ा रहा है, हम चिल्ला चिल्ला कर इतना तो अवश्य करेंगे, भैया इसको निकालना, बेचारा बहुत दुखी है, किंतु स्वयं निकालने के नाम पर कदम नहीं बढ़ाते, नहाना पड़ेगा उसको संकट से उबार कर। प्रयोग का लोक में भी परमार्थ में भी बहुत महत्व है। मैं वंश रहित हूँ, यदि मेरा वंश है ही तो वह है चेतना। वंश को जो पवित्र करे उसे पुत्र कहते हैं। मेरा वंश है चेतना और उसे पवित्र करने वाला मैं स्वयं हूँ। यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवानी मस्तकनम सदा देत हो बोलो। विरसा
नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो वज्रनम नमो लोहिशोभसाम नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो वज्रनम नमो